पृष्ठ संख्या 210। यूएन की राजतंत्रीय योजनाओं की भनक मिलते ही चारों ओर विरोध का वातावरण तैयार हो गया। शुरू में मध्यवर्गीय और प्रगतिवादी दलों ने विरोध किया। भूतपूर्व कुओमिंतांग के कुछ सदस्यों ने भी इस विरोध में भाग लिया। यूननान के राज्यपाल ने यूएन को राजतंत्रीय आंदोलन समाप्त करने की चुनौती दी। बाद में 25 अक्टूबर 1925 ईस्वी को यूननान की स्वतंत्रता घोषित कर दी। दक्षिण पश्चिम सैनिक दल द्वारा चलाए गए राजतंत्र विरोधी आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे संविधान की रक्षा करना, यूएन को राष्ट्रपति पद से हटाना, केंद्रीय सरकार को पुनर्गठित करना तथा प्रांतीय स्वतंत्रता को पुनः स्थापित करना। कुयेई चोउ और कुआंगशी ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सुन यात सेन के जापान से शंघाई वापस आ जाने के बावजूद भी उनकी पार्टी ने इस राजतंत्र विरोधी आंदोलन में नगण्य भूमिका ही अदा की। जापानी सरकार ने भी यूएन को सतर्क कर दिया। इतने विरोध के कारण यूएन का राजतंत्र स्थापित करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। अनेक क्रांतिकारी दलों ने तो यूएन को राष्ट्रपति भी स्वीकार नहीं किया। यूएन के समर्थकों ने धीरे धीरे उनका साथ छोड़ना आरंभ कर दिया। इस दौरान यूएन की अचानक मौत हो गई और राजतंत्र स्थापित करने का उनका प्रयास भी उनके साथ ही दफन हो गया। एक विद्वान ने यूएन तथा उनके चरित्र का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि यूएन और उनके देश का दुर्भाग्य यह था कि वह प्राचीन व्यवस्था के प्रतिनिधि थे। सरकार के बारे में उनके विचार एक विद्वान के थे, लेकिन एक ऐसा विद्वान जो प्राचीन काल का तानाशाह बनने के ही काबिल था, वह शायद एक अच्छा तानाशाह बन सकते थे। ही वुड परहैप्स हैव मेड ए गुड टायरेंट। जॉन शेजनो के अनुसार वास्तव में सैनिकवाद और क्षेत्रवाद पर आधारित नए योद्धा सामंतवाद काल का आगमन यूएन के उदय से ही आरंभ होता है। वास्तव में वह पहले योद्धा सामंत थे। एक्चुअली द न्यू वार लॉर्ड इरा विथ इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलिटेरिज्म एंड रीजनलिज्म बिगेन विथ द राइज टू पावर ऑफ यूएन सिखाए। ही वॉज इन फैक्ट द फर्स्ट वार लॉर्ड। यूएन सरखाई की मृत्यु के पश्चात 1916 ईस्वी से 1927 ईस्वी के बीच एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के अभाव में चीन में अराजकता और कलह की स्थिति पैदा कर दी। इस अवधि के दौरान योद्धा सामंत बिना किसी तर्क और विचार के निजी स्वार्थ हेतु आपसी शक्ति स्पर्धा में तल्लीन थे। यही कारण है कि इस काल को इतिहासकार चीन के इतिहास का अंधकारमय काल भी मानते हैं। युवन की मृत्यु के बाद वास्तविक शक्ति सैनिक नेताओं के हाथों में आ गई। चीन में इन्हें तचुवन के नाम से जाना जाता था। युवन के वास्तविक उत्तराधिकारी योद्धा सामंत वारलॉर्ड्स ही थे, जो पेयांग गुट के नाम से भी जाने जाते थे। विभिन्न प्रांतों में उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और क्रूर नौ सामंतों के रूप में उनका उदय हो रहा था। इसके साथ साथ वे केंद्रीय सत्ता को भी प्रभावित करने की कोशिश में लगे हुए थे। कुछ शक्तिशाली योद्धा सामंतों के नाम इस प्रकार हैं: चांग यून, फंग कुओ चांग, नी सी चुवंग तथा शिव सुचंग। शिव सुचंग ने पेयांग गुट का नेतृत्व ग्रहण कर रखा था, लेकिन 1920 ईस्वी तक चीन के राजनीतिक क्षेत्र में पेयांग गुट लगभग लुप्त हो चुका था और इसकी जगह दूसरी और तीसरी पीढ़ी के अनेक योद्धा सामंतों ने ले ली। आरंभ में योद्धा सामंतों ने अंतर क्षेत्रीय बैठकों द्वारा आपसी एकता स्थापित करने की कोशिश की। 1917 ईस्वी में योद्धा सामंत गुट तुचुएन थुएन ने चीनी सरकार के सामने पहले ही यूरोपीय युद्ध में प्रवेश की सिफारिश की। योद्धा सामंत संसदात्मक सरकार के विरुद्ध थे और 1917 ईस्वी में ही उन्होंने संसद को खत्म करने की मांग की। उन्होंने हमेशा कन्फ्यूशियस धर्म की राजधर्म के रूप में पुनः स्थापना की मांग की, क्योंकि वे समझते थे कि केवल यही धर्म राजतंत्र के प्रति निष्ठा और अनुशासन कायम रख सकता है। लेकिन जल्दी ही योद्धा सामंतों में आपसी संघर्ष के बीज पनपने लगे। इस संघर्ष के फलस्वरूप दो विरोधाभासी गुटों का जन्म हुआ, श्रली गुट और आनफू गुट। कुछ योद्धा सामंतों ने अपने प्रांतीय आधार को सुदृढ़ करके पेइचिंग सरकार को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश भी की। फंग कुओचांग ने निचले यांगतज प्रांतों को इस कार्य के लिए अपना आधार बनाया। यानहुई के राज्यपाल और आनफो गुट के नेता सिचुंग ने भी अपने प्रांत को इस कार्य के लिए प्रयोग करने की योजनाएं बनाई। कुछ योद्धा सामंतों ने अपनी गतिविधियों को अपने क्षेत्रों तक ही सीमित रखा और अपने प्रांतों को केवल आर्थिक लाभ और शक्ति के स्रोत के रूप में देखा। इन दोनों प्रकार की परिस्थितियों में योद्धा सामंतों की शक्ति का आधार पूर्ण रूप में स्थानीय सशस्त्र सेनाएं एवं वित्तीय साधन थे। अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अधिकतर योद्धा सामंतों ने अफीम और शस्त्रों का अवैध व्यापार भी किया। वह अक्सर आम प्रजा से धन बटोरने के लिए कठोर साधन भी अपनाते थे। योद्धा सामंत अपने अधीनस्थों और सैनिकों की अर्थ सामंती स्वामी भक्ति तथा वफादारी पर निर्भर थे। वह सत्ता में बने रहने के लिए छल और षड्यंत्र का भी उतना ही प्रयोग करते थे जितना कि क्रूर शक्ति का। यह योद्धा सामंत सूक्ष्म राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर एक दूसरे से कुछ भिन्न भी थे। कुछ कट्टर रूढ़िवादी थे, कुछ फंग युशियांग जिसने अपनी सेना को श्रमिक सैनिकों का नाम दिया जैसे प्रगतिशील योद्धा सामंत भी थे। धन चियोंगमिंग जैसे कुछ योद्धा सामंतों ने अराजकतावादी विद्वानों को अपने सलाहकारों के रूप में रखा हुआ था। इन सबके अलावा कुछ योद्धा सामंत अभी भी यही सोचते थे कि वह गणतंत्रात्मक क्रांति की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। कुछ योद्धा सामंत यदि केवल क्रूर शक्ति का सहारा लेते थे तो कुछ ऐसे भी थे जो बड़ी चालाकी से प्रांतीय स्वायत्तता के प्रश्न को उठाकर अपना फायदा करने की होड़ में लगे रहते थे। वास्तविकता यह थी कि वे सभी विद्यार्थी थे। योद्धा सामंतों की शक्ति स्थानीय संभ्रांत वर्ग के साथ उनके संबंधों पर भी आधारित थी। संभ्रांत वर्ग के सदस्य अपने प्रांतों में वहां की राजनीति की ओर बिना अधिक ध्यान दिए अपने शक्ति सुदृढ़ करना चाहते। संभ्रांत वर्ग का नारा पाओ चिंग आन मिंग अथवा प्रजा में व्यवस्था स्थापित करके जनपद को संरक्षण प्रदान करो, प्रोटेक्ट द डिस्ट्रिक्ट बाय मेंटेनिंग ऑर्डर एमंग पीपल, इसी उद्देश्य को इंगित करता था। प्रांतीय और क्षेत्रीय शक्तियों के प्रभाव ने राज्य कार्यप्रणाली को सामर्थ्यहीन और संबद्धताहीन बना दिया। आर्थिक, वित्तीय और राजनयिक क्षेत्रों में प्रांतों ने अपने ही ढंग से कार्य करना आरंभ कर दिया था। यहाँ तक कि प्रांतों ने विदेशी बैंकिंग गुटों के पास अपने साधनों को गिरवी रखकर ऋण लेने भी आरंभ कर दिए। चीन के प्रशासनिक जीवन की दुर्दशा का एक मुख्य उदाहरण उसकी वार्षिक डाक सेवा रिपोर्ट है। इन रिपोर्टों में पूरी तरह से वर्णन किया गया है कि किस प्रकार सैनिक विद्रोह, डाकुओं द्वारा मचाई गई लूटमार, गृह युद्ध हो, योद्धा सामंतों द्वारा धन बटोरने के कामों, रेल और सड़क यातायात में रुकावटों, बेगार प्रथा तथा हर प्रकार की बर्बादी ने चीन को दयनीय स्थिति में डाल दिया था। बढ़ती हुई डकैती प्रथा इन दोनों बातों का संकेत करती थी कि राजनीतिक सैनिक संकट राज्य को विघटित कर रहा था तथा कृषक संकट निर्धन कृषकों को उनके गांवों से भागने पर मजबूर कर रहा था। इस काल के आरंभ से लेकर अंत तक कृषकों की दशा बिगड़ती चली गई। योद्धा सामंतों ने न केवल हद से ज्यादा चुंगी और कर वसूल किए बल्कि इन्हें अक्सर पेशगी के रूप में और साल में अनेकों बार वसूल किया। योद्धा सामंतों ने प्रायः अपने सैनिकों को मनमानी करने की छूट दी जिसमें लूटमार और कत्ल करना भी शामिल था। किसी कानून या मुआवजे की परवाह किए बिना ही योद्धा सामंत किसानों, उनके पशुओं और गाड़ियों का अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दुरुपयोग करते थे। इस प्रकार चीन अनुशासनहीनता और गरीबी के अंधकार में धस गया। योद्धा सामंतों ने वाणिज्य मंडलों, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को विशेष रूप से परेशान किया क्योंकि उन्हें न केवल आसानी से बल्कि कारगर ढंग से भी ब्लैकमेल किया जा सकता था। वाणिज्य मंडलों को अक्सर यह धमकी दी जाती थी कि यदि सैनिकों को वेतन अदा करने में योद्धा सामंतों की सहायता नहीं की गई तो उनकी सेनाएं विद्रोह कर देंगी। असल में निरंतर सैनिक विद्रोहों के कारण कई बार पूरे के पूरे नगर ही नष्ट हो जाते थे। इसके डर से व्यापारियों को योद्धा सामंतों की जरूरतें मजबूरी में पूरी करनी ही पड़ती थी। इस प्रकार योद्धा सामंतों की शक्ति का आम प्रजा के साथ साथ बुर्जुआ वर्ग पर भी अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। ऐसे वातावरण में आर्थिक विकास रुक गया और राष्ट्रीय उद्योग में असुरक्षित यातायात तथा अस्थिर बाजार के कारण गंभीर संकट पैदा हो गया। विभिन्न गुटों की आपसी लड़ाइयों के कारण योद्धा सामंतों ने अपने अपने क्षेत्रों में रेलवे पर अपने एकाधिकार जमा लिए थे, जिसकी वजह से रेलवे सुविधाएं असैनिक यात्रियों तथा सामान के लिए उपलब्ध नहीं रही। योद्धा सामंतों ने जन आंदोलन को दबाने की कोशिश की, भले ही वह राष्ट्रीय हो अथवा श्रमिकों की मांग से संबंधित। हमेशा योद्धा सामंत चाओ हंगथी ने बड़ी क्रूरता से विद्यार्थियों के उस आंदोलन को कुचल डाला, जिसमें जापान विरोधी बहिष्कार की मांग इसलिए की गई थी कि जापानी नौसैनिकों ने तालियेन बंदरगाह की वापसी के लिए किए गए प्रदर्शन पर हमला करके 4 लोगों को मार डाला था। चीन के राजनीतिक भूगोल को योद्धा सामंतों ने अत्यंत जटिल और अस्थिर बना दिया था, क्योंकि उनके आपसी अस्थायी समझौते और वफादारी के वायदे निरंतर बदलते रहते थे। आपसी झगड़े और साजिशें भी योद्धा सामंतों के स्वभाव का अभिन्न अंग बन चुके थे। असल में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस दशा ने उस नव सामंतवाद को जन्म दिया, जो कृषकों का शोषण सामंती ढंग से ही करता था। नव सामंतवादी व्यवस्था ने 1920 ईस्वी के दशक के दौरान हुए पूंजीवादी विकास का भी फायदा उठाया। योद्धा सामंतों ने कारखाने ही नहीं खरीदे, बल्कि अफीम और शस्त्रों के अवैध व्यापार में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध के समय पेयांग गुट युद्ध में प्रवेश करने को तत्पर था, ताकि देश में सेना की स्थिति सबल हो जाए, लेकिन ली युवन हुंग और सुन यात सेन दोनों युद्ध में प्रवेश के विरोधी थे। 1917 ईस्वी में प्रधानमंत्री तुवन छिरुयेई ने योद्धा सामंत गुट के कहने पर संसद के माध्यम से जर्मनी से संबंध विच्छेद कर लिए। ली युवन हुंग ने तुवन को निष्कासित कर दिया और दूसरे सैनिक नेता चांग सयुवन से मदद की मांग की। सयुवन ने पेचिंग पर अधिकार कर लिया और ली के द्वारा संसद भंग करवा दी, लेकिन तुवन और योद्धा सामंत संघ के विरोध के कारण सयुवन और ली का पतन हुआ तथा ली की जगह पर फंग कुओ चांग राष्ट्रपति बने। 1918 ईस्वी तक तुवन के नेतृत्व में आनफो गुट ने चीन की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। तुवन तथा फंग के बीच शक्ति स्पर्धा हुई और अंततः फंग की जगह शिव चुअंग और अंततः फंग की जगह शिव सुचंग राष्ट्रपति बने, जिन्हें योद्धा सामंत संघ का समर्थन प्राप्त था। लेकिन तुवन के नेतृत्व में आनफो गुट की शक्ति का लगातार पतन होता रहा। इन्हें जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था, यहाँ तक कि आर्थिक संसाधनों और सूचना पर केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण कम होता जा रहा था। लोग योद्धा सामंतों की स्थानीय लड़ाइयों से तंग आ चुके थे। युवन सरखाई की मृत्यु से लेकर लगभग 1919 ईस्वी तक चीनी राजनीति स्थानीय संघर्षों से परिपूर्ण रही। 1916 ईस्वी में आनफो गुट ने सचुवन पर अपना अधिकार करना चाहा, लेकिन 1918 ईस्वी में सिउंग खऊ ने स्थानीय संभ्रांत वर्ग की सहायता से वहां योद्धा सामंतों की सत्ता समाप्त कर दी। 1917 ईस्वी में तुवन द्वारा संसद भंग करने के बाद सुन यात सेन ने दक्षिण सैनिक नेताओं से समझौता करके सैनिक शासन की स्थापना की, लेकिन जल्दी ही सुन ने यह महसूस किया कि वह सैनिकों के हाथों एक कठपुतली बनकर रह गए थे। अतः 1918 ईस्वी में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लू यिंग थिक के नेतृत्व में कैंटन सरकार की पुनर्स्थापना की गई। 1919 ईस्वी में शंघाई में उत्तरी और दक्षिणी गुट के बीच समझौते की असफल कोशिश की गई। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात योद्धा सामंतों की शक्ति में और अधिक वृद्धि हुई। उत्तरी चीन में पेचिंग सरकार दो विरोधी सैनिक गुटों के बीच संघर्ष का क्षेत्र बना चुकी थी। सुन यात सेन के नेतृत्व वाली कैंटन सरकार का प्रभाव दक्षिणी चीन के कुछ भागों पर ही था। जल्दी ही सैनिक नेताओं ने सुन को कुआंगचोउ से खदेड़ दिया। पेचिंग सरकार ने वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, लेकिन चीन फिर भी विदेशियों के नियंत्रण में रहा। इस समय 4 मुख्य सैनिक नेता थे: फंग थियन गुट का नेता चांग तजू ओलिन, चिरली गुट के नेता वु फेईफू, चिरली गुट के दूसरे नेता तसाओ खून तथा फंग युशियांग। 1920 ईस्वी से केंद्रीय सरकार पर फंग थियन तथा चिरली गुटों का नियंत्रण था। 1921 ईस्वी के बाद इन दोनों में शक्ति संघर्ष आरंभ हो गया। अंत में वू फेईफू के गुट ने विजय प्राप्त की और भूतपूर्व राष्ट्रपति ली युवन हुंग को पुनः राष्ट्रपति मनोनीत किया गया। वू ने सुन यात सेन से इस्तीफे की मांग की। नई सरकार ने खुद को वैध बताया तथा चीन की एकता की मांग की, लेकिन इस सरकार की शक्ति भी सेना पर आधारित थी। इन कठिनाइयों के बावजूद चीन की राजनीतिक दशा ने योद्धा सामंतों के आपसी संघर्ष को सीमित कर रखा था। उनकी शक्ति का स्वरूप मुख्यतः क्षेत्रीय था। एक योद्धा सामंत आमतौर पर खुद को किसी क्षेत्र में सुदृढ़ करके वहां के आर्थिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना अपना मुख्य उद्देश्य समझता था। ऐसे कार्य में योद्धा सामंतों का साथ संभ्रांत वर्ग और जमींदारों ने भी दिया। ऐसी व्यवस्था में विशेष रूप से किसानों का शोषण होता था। इसी कारण इसे नव सामंतवाद नियो फ्यूडलिज्म की संज्ञा दी जा सकती है। नव सामंती व्यवस्था में योद्धा सामंतों और उनके सहयोगियों ने 1920 ईस्वी के दशक में पूंजीवादी विकास का भी लाभ उठाया था तथा विभिन्न प्रकार के कारखानों में अपनी पूंजी लगाई। 1934 ईस्वी में सुन यात-सेन की कुओमिंतांग और साम्यवादी दल के बीच समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य जन क्रांति को बढ़ावा देना, कुआंगचोउ को सुदृढ़ करना तथा योद्धा सामंतों की शक्ति को नष्ट करना था। सुन 1921 ईस्वी से ही योद्धा सामंतों को खत्म करना चाहते थे। उत्तरी चीन पर 1922 ईस्वी से चिरली गुट का आधिपत्य था। शंघाई आनफू तथा फंग थियन गुटों के नियंत्रण में था। 1924 ईस्वी में फंग थियन चिरली संघर्ष में वू फेईफू विजयी प्रतीत हो रहा था, लेकिन फंग युशियांग ने पेचिंग पर अधिकार करके तसाओ खुन को राष्ट्रपति पद से हटा दिया। वू अपने बेचे हुए सैनिकों के साथ यांगतज चला गया। फंग युशियांग ने सुन यात-सेन को आमंत्रित किया। सुन ने व्यापारियों, उद्योगपतियों, शिक्षकों, मजदूरों, किसानों और विश्वविद्यालयों के सहयोग पर आधारित एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की कोशिश की। फंग ने सुन को इस कार्य में समर्थन दिया, लेकिन फंग के अधिकतर सहयोगियों ने इसका विरोध किया। सुन यात-सेन तथा साम्यवादी दल ने पूरे देश में राष्ट्रीय सम्मेलन के पक्ष में जुलूस निकाले, लेकिन 1925 ईस्वी में सुन की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई। अतः योद्धा सामंतों की शक्ति बरकरार रही। फंग निराश होकर उत्तर पश्चिम की ओर चला गया। चिरली आनफू तथा फंग थियन गुट आपस में संघर्षरत रहे। 1925 ईस्वी में सुन छुआन फांग का परम योद्धा सामंत सुपर वारलॉर्ड के रूप में उदय हुआ। अब चीन के लोग योद्धा सामंतों की नीतियों से तंग आ चुके थे। फलस्वरूप अगस्त दिसंबर 1926 के मध्य में फलस्वरूप अगस्त सितंबर 1926 के मध्य वे फेईफू दक्षिणी सेना द्वारा फलस्वरूप अगस्त दिसंबर 1926 के मध्य वे फेईफू दक्षिणी सेना द्वारा पराजित हुआ। परम योद्धा सामंत सुन छुआन फांग भी पराजित हुआ, लेकिन मंचूरिया के योद्धा सामंत चांग तजू ओलिन की शक्ति बराबर बरकरार रही। जुलाई 1927 ईस्वी में वुहान की साम्यवादी सरकार का पतन होने के बावजूद उत्तरी चीन के योद्धा सामंत पहले की तरह शक्तिशाली बने रहे। फंग थियन गुट ने उत्तर पूर्व के साथ साथ पेचिंग पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था। 1928 ईस्वी में पेचिंग पर राष्ट्रीय सरकार ने चढ़ाई की। वांग तजुओलिन पराजित होने के बाद मारा गया तथा उसके पुत्र ने कुओमिंतांग की सदस्यता प्राप्त कर ली। इस प्रकार पूरा चीन कुओमिंतांग के नियंत्रण में आ गया। नानचिंग में केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई। 10 अक्टूबर 1928 ईस्वी को गृह युद्ध और योद्धा सामंतों की समाप्ति तथा राष्ट्रीय आंदोलन के सफलता दिवस के रूप में मनाया गया।